पृथ्वी इस समय आस्तिक के बताए किसी बिजनेस पार्टनर के फार्म हाउस में था। यहाँ के केयरटेकर ने पृथ्वी के आने से पहले ही सारा अरेंजमेंट कर दिया था। पृथ्वी गेस्ट रूम में था, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। जब से वो जानवी को छोड़कर आया था, तब से ही वो बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मन में कुछ भारी सा पड़ा हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा ऊपर करके अपने मन को शांत करने लगा, लेकिन आंखें बंद होने के साथ ही उसके सामने जानवी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ जाता है, जिसे याद करके पृथ्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो घबराकर इधर उधर देखते हुए कहता है, ये मैं बार बार जानवी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वैसे भी वो लड़की इतनी इम्पॉर्टेंट थोड़ी ना थी, मेरी बस एक पेशेंट ही तो थी, और अब वो भी अपने मंजिल पर पहुंच गई है और मुझे भी वापस जाना है। मुझे हॉस्पिटल का 2 दिन का काम है, बस वो एक बार खत्म हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और फिर मैं कभी पलटकर जानवी की तरफ नहीं देखूंगा। वैसे उसने भी तो पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा था। ये ख्याल मन में आते ही पृथ्वी खुद को डांटते हुए कहता है, फिर जानवी? अभी अभी तो कहा कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो फिर क्यों उसके बारे में ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं? पता नहीं ये लड़की मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मैंने उसकी मांग? क्या बकवास सोच रहा हूं मैं, वो बस एक एक्सीडेंट था। जानवी भी इस चीज को वैल्यू नहीं करती है। पता नहीं मुझे भी उस वक्त क्या हो गया था, एक छोटे से हादसे से मैं खुद को इतना कैसे जोड़ सकता हूँ। नहीं, जानवी मुझे इस तरीके से इफेक्ट नहीं कर सकती है, और उसकी मांग भरना ये कुछ भी नहीं था। ये शादी थोड़ी ना थी, शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। और फिर मैं जानवी से शादी कैसे कर सकता हूँ, या मैं किसी से भी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अरुणिमा। तभी पृथ्वी का पूरा चेहरा ब्लैक हो जाता है। इतने दिनों में उसे एक भी बार अरुणिमा का ख्याल नहीं आया, ना ही उसकी कोई बात याद आई। पृथ्वी अफसोस के साथ कहता है, कैसे कह सकता हूँ कि मैं अरुणिमा को पसंद करता हूँ, जबकि उसकी इतनी बुरी हालत मेरे सामने ही है। भाई अरुणिमा के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसके बाद क्या मुझे ये कहने का हक है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? शायद नहीं। और वैसे भी अरुणिमा मेरी भाभी है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। उसके बाद पृथ्वी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने माथे से लगाता है और अपने चेहरे को झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी अरुणिमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे दोस्ती की, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। कम से कम मैं अपनी दोस्ती का रिश्ता निभा पाता, पर मैंने वो रिश्ता भी नहीं निभाया है। मुझे माफ कर दो, भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तभी पृथ्वी की अंतरात्मा की आवाज उसके सामने आती है, तूने कहा तूने अरुणिमा के साथ गलत किया है, तो तूने जानवी के साथ कौन सा सही किया है? ना तो तू अरुणिमा से अपनी दोस्ती का रिश्ता निभा पाया है और ना ही जानवी के साथ अपनी शादी का रिश्ता निभा रहा है। पृथ्वी चौंक जाता है और अपनी ही आवाज से लड़ते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जानवी और मेरी शादी नहीं हुई है, मैं उस शादी को नहीं मानता हूँ। अंतरात्मा हंसते हुए कहती है, अबे जा, तू नहीं मानता है? तू कौन होता है ना मानने वाला? तेरे नहीं मानने से दिन रात तो नहीं हो जाती है ना? तेरे नहीं मानने से दुनिया बदल तो नहीं जाती है ना? जब दुनिया नहीं बदल जाती तो दुनिया के नियम कैसे बदल जाएंगे? पर दुनिया का नियम यही है कि एक बार किसी लड़की की मांग में सिंदूर डाल दिया जाता है तो उस लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती है। पृथ्वी गुस्से में खड़ा होता है और कमरे के सामान को इधर से उधर फेंकते हुए कहता है, चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना है ये सब, चुप हो जाओ। यहाँ पृथ्वी अपने दर्द में हताश हो रहा था, तो वहीं आस्तिक आज सुकून की नींद सो रहा था। आज वो बुरा सपना उसे नहीं आया था। आज उसे अपने पास बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास हो रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जब आस्तिक की नींद खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलता है, तो अपने सीने पर अरुणिमा को देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो जाता है। अरुणिमा किसी छोटी गुड़िया की तरह उसके सीने पर चिपक कर सो रही थी, लेकिन आज आस्तिक को अरुणिमा का अपने ऊपर सोता देखकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो बस शांत भाव से अरुणिमा को देखे जा रहा था। तभी अचानक से अरुणिमा की नींद कच्ची हो जाती है और वो अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अपनी आंखें खोलने के साथ जैसे ही उसकी नज़र आस्तिक पर पड़ती है, वो डर से उठकर बैठ जाती है और अपनी साड़ी संभालते हुए कहती है, माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मैं जानबूझकर नहीं आई थी। वो कल रात आप नींद में कुछ कह रहे थे, मैं आपको संभालने के लिए आई थी, तो आपने मुझे पकड़ लिया। मैं जानबूझकर आपके पास नहीं आई थी, मैं सच कह रही हूँ। आस्तिक देख पा रहा था अरुणिमा ये सब कितने डरते हुए कह रही थी, लेकिन आस्तिक की नज़र अरुणिमा के चेहरे पर ही थी। अरुणिमा को लगा आस्तिक इस हरकत के लिए उसे सजा देगा, उसे पीटेगा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपनी सफाई देते हुए कह रही थी, राजा साहब मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं जानबूझकर आपके पास नहीं आई थी, आपने ही मुझे ज़बरदस्ती खींचा था और फिर आप ही ने मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में लिया था, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कॉफ़ी? आस्तिक ने बहुत ही नरम लहजे के साथ ये कहा, तो अरुणिमा हैरानी से उसे देखते रह गई। आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तुम अच्छी कॉफ़ी बनाती हो, अरुणिमा जल्दी से कहती है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद अरुणिमा अपनी साड़ी सही करती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही आस्तिक के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने शायद ही कभी अपने चेहरे पर लाई होगी। तभी उसका फ़ोन बजता है, वो देखता है उसके खास आदमी का फोन है जो इस समय प्रताप के ऊपर नजर रखे हुए है। प्रताप अभी भी आस्तिक के चंगुल में ही है। इस मैसेज को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर रेडी होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आज उसे एक जरूरी काम निपटाना है।